आज है 8 सितंबर दिन मंगलवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं सुशीला सिंह। महागठबंधन से अलग हुई सपा ने बिहार की सभी 243 सीटों पर किया चुनाव लड़ने का ऐलान।
पूंजीवादी व्यवस्था से समाजवादी पार्टी का कभी गठजोड़ नहीं हो सकता है, ऐसे ही स्थिति में समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे।
मिलेंगे ऑपरेशन जिब्राल के सिपाहियों से।
तो हम बच्चे थे उस वक्त,
बिल्कुल ही मेरी उस वक्त जो 13-14 साल उम्र थी जब मैं भर्ती हुआ,
और एक मैं नहीं था, हमारे साथ जितने भी तकरीबन बहुत बच्चे थे जो मेरी उम्र के थे, और जिस दिन फायर नहीं होता था हम बड़े परेशान होते थे, तो जिस दिन फायर स्टॉप हो जाए तो हमें बड़ी मायूसी की, फुगल नहीं गई, फायर नहीं हो रहा, हम फायर को शुगल समझते थे।
और फैला उजियारा में आपको मिलवाएंगे राजाओं के राजा राजेंद्र चौल से, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इससे पहले बिहार में हुए जेडीयू, आरजेडी, सपा और कांग्रेस के महागठबंधन ने समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें दी थी। इससे नाराज समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग हो गई और उसने राज्य की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का निश्चय किया है। हंगरी के रक्षा मंत्री चोबा हेंडे ने इस्तीफा दे दिया है। सरकारी वक्तव्य में इस इस्तीफे की वजह नहीं बताई गई है, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक सर्बिया से लगी सीमा पर 4 मीटर ऊंची दीवार बनाने में हुई देर इसकी एक वजह हो सकती है। इस दीवार का निर्माण प्रवासियों को देश में दाखिल होने से रोकने के लिए किया जा रहा था। इसका निर्माण कार्य पिछले महीने ही पूरा हो जाना चाहिए था। इस्तवान सिमिक्स्को देश के नए रक्षा मंत्री होंगे। इस बीच सैकड़ों प्रवासियों ने सर्बिया से लगी हंगरी की सीमा पर पुलिस लाइन को फिर तोड़ दिया और देश में दाखिल हो गए। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 300 प्रवासी पुलिस के संरक्षण में राजधानी बुडापेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थियों के लिए एजेंसी UNHCR ने लेस्बोस द्वीप पर प्रवासियों की बड़ी तादाद को संभालने के लिए ग्रीस के अधिकारियों की मदद करना शुरू कर दिया है। तुर्की से करीब 20,000 शरणार्थी इस द्वीप पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले ग्रीस के अप्रवासन मंत्री यानिस मौजोलास ने चेतावनी दी थी कि ये द्वीप इतने सारे लोगों को नहीं झेल पाएगा। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावुतोग्लू ने वायदा किया है कि वो कुर्द चरमपंथी गुट PKK को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। सरकार ने कहा था कि दक्षिण पूर्व तुर्की में PKK के लड़ाकुओं के सड़क किनारे बम लगाने के कारण 16 सैनिक मारे गए हैं। इसके बाद ही प्रधानमंत्री ने ये बात कही। ये तुर्की सेना पर सालों बाद हुआ सबसे भयंकर हमला था। एक संवाददाता सम्मेलन में तुर्की के प्रधानमंत्री ने कहा कि तुर्की PKK को किसी भी तरह जड़ से खत्म कर देगा। आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई से आप हमें डिगा नहीं सकते। इन पहाड़ों से हम चरमपंथियों को साफ कर देंगे, चाहे इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, हम अपने पहाड़ों से इन्हें खत्म कर देंगे। ये थे प्रधानमंत्री अहमद दावुतोग्लू के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ग्वातेमाला के चुनाव के पहले दौर में जिमी मोरालस जीत गए हैं। वे एक हास्य कलाकार रहे हैं जिन्होंने इससे पहले किसी सरकारी पद पर काम नहीं किया है। एक पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी सांड्रा टोरस और एक व्यापारी मैनुअल बाल्डिजान में अभी कांटे की टक्कर चल रही है। इन दोनों में से जो भी जीतेगा उसके और जिमी मोरालस के बीच अगले महीने निर्णायक चुनावी टक्कर होगी। कुछ दिनों पहले ग्वातेमाला के राष्ट्रपति ओटो पेरेज मोलिना को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पद से इस्तीफा देना पड़ा था। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। समाजवादी पार्टी ने बिहार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस महागठबंधन के लिए अपने दरवाजे बंद करते हुए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने की घोषणा की है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने कहा है कि सभी 243 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन उन्होंने वामदलों और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर तीसरे मोर्चा बनाने की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने बात की बिहार में सपा के अध्यक्ष रामचंद्र यादव से।
देखिए, समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की जो यह फैसला है, निश्चित तौर पर महागठबंधन के घटक दलों द्वारा जो धोखेबाजी की नीति अपनाई गई और पूंजीवादी व्यवस्था रूपी कांग्रेस पार्टी से गठजोड़ किया गया, महिमा मंडित किया गया, 5 दलों के गठबंधन होना था, विलय होना था आपस में, विलय नहीं हुआ, उसके बाद महागठबंधन हुआ, तीन दल यहाँ हावी था, सपा, जदयू, आरजेडी। आज जब गठबंधन में सीटों के शेयरिंग के मामला आए तो कांग्रेस को उठा करके बौरव खिलाड़ी के रूप में पूरी तरह से महिमा मंडित करने का काम किया गया माननीय नीतीश जी के द्वारा। इस एवज में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डॉक्टर जेपी लोहिया कर्पूरी के अनुयायी पार्टी है और उनके विचारों के पार्टी है, उनके नित्य के पार्टी है। पूंजीवादी व्यवस्था से समाजवादी पार्टी का और समाजवादी सोच के लोगों का कभी गठजोड़ नहीं हो सकता है। ऐसे ही स्थिति में समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे अपने दम पर, और जरूरत पड़ने पर अन्य भी जो धर्मनिरपेक्ष दल है, छोटे घटक दल है, उन दलों से भी बातचीत हमारी चल रही है और जरूरत पड़ने पर तीसरा मोर्चा का भी निर्माण होगा।
तो आपने आज जो ऐलान किया है वो ऐलान आपकी बिहार कमेटी की तरफ से या ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है?
देखिए, मैं बिहार का एक जो है सिपाही हूँ और बिहार का एक जो है मतलब कि माननीय नेताजी का एक पोस्टमैन हूँ। मेरा अपना कोई निर्णय नहीं होता। पार्लियामेंट्री बोर्ड पहले ही नीतीश वहाँ लखनऊ में जो है निर्णय ले चुकी थी कि हमें बिहार के अंदर, हम बिहार के अंदर सभी सीटों पर चुनाव लड़ना है, हम बिहार पर, हमको अपने दम पर चुनाव लड़ना है। ये मामला तो पहले ही तय हो गया था, सिर्फ ये तय करना था कि हमको प्रारूप देना था कि कितने सीटों पर लड़ना है। तो प्रारूप के रूप में यह तय हो गया है केंद्रीय नेतृत्व से पुनः वार्ता करके और बिहार प्रभारी किरण मई नंदा जी से वार्ता करके कि हम अपने दम पर 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जरूरत पड़ेगी तो हम जो है मतलब कीजिए अगर कुछ ऐसे दल आएंगे, अगर आ जाते हैं, हम दल हैं, एनसीपी है, सभी लोग ऐसे लोग अगर आते हैं तो हम तीसरा मोर्चा का भी निर्माण करेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे।
बिहार में समाजवादी पार्टी इस स्थिति में फिलहाल नहीं दिखती है कि वो अपने दम पर सरकार बना सके, तो कहीं ऐसा नहीं होगा कि आपके अलग चुनाव लड़ने से महागठबंधन के वोट कटेंगे, उनको नुकसान होगा?
नहीं, नुकसान और फायदे की राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं समाज के लिए, राजनीति कर रहे हैं जमहूरियत के लिए, राजनीति कर रहे हैं देश के लिए। हमारे नेता समाजवाद के नित्य का सुरक्षा और सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी किसी के नुकसान और फायदे की बात नहीं। समाजवादी पार्टी बिहार के अंदर जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति के देख करके एक रेखा दिया है, एक ऐसा आयाम, एक विकल्प दिया है। और याद रखिएगा, समाजवादी पार्टी ऐसे रूप में चुनाव लड़ेगी इस बार बिहार के अंदर कि हम अगर सरकार नहीं बना पाए तो हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी।
बिहार में सपा के अध्यक्ष रामचंद्र यादव से बात कर रहे थे वात्सल्य राय। अगस्त 1965 में अंदरूनी असंतोष की स्थिति भारत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में जंगल में आग की तरह फैल गई। एक महीने बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया जिसे पाकिस्तानियों ने बिना उकसावे वाला कदम बताया। बिना हार जीत के खत्म हुई इस लड़ाई के बाद से ही पाकिस्तान हर साल जीत का जश्न मनाता रहा है। उसका कहना है कि वो अपने कहीं ज्यादा बड़े सेना को धकेलने में कामयाब रहा था। लेकिन क्या भारत प्रशासित कश्मीर में उपजी बगावत वाकई अंदरूनी थी? इस्लामाबाद से लिया खान की रिपोर्ट जिसे पेश कर रहे हैं अशोक कुमार।
65 की जंग जब शुरू हुई उससे पहले हमें वॉलंटियर होकर हम जिब्राल्टर फोर्स में ट्रेनिंग के लिए गए।
ये हैं 71 साल के कुर्बान अली। वो उन तथा कथित चरमपंथियों में से एक हैं जो अगस्त 1965 में भारतीय सैनिकों से लड़े थे। कुर्बान अली पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के रहने वाले हैं और असल में वो कोई चरमपंथी नहीं थे, बल्कि वो तो पाकिस्तानी सेना की आजाद कश्मीर रेजिमेंट के एक सैनिक थे। आज भी वो अपना परिचय पूर्व सैनिक के तौर पर ही देते हैं।
मेरा नाम ऑनरेरी सब मेजर कुर्बान अली है, मैं एक ही रेजिमेंट से मेरा सलक है।
कुर्बान अली खुद को जिब्राल्टर फोर्स का हिस्सा बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी आधिकारिक तौर पर ये नहीं माना कि उसने कभी कोई ऐसी फोर्स बनाई थी। हालांकि पाकिस्तान के कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि एक मिलीजुली फोर्स थी। इसमें सेना के नए वॉलंटियर और ऐसे बहुत से रंग रूट शामिल थे जिनमें से ज्यादातर का संबंध पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से था। उन्हें 1965 में जुलाई के आखिर और अगस्त की शुरुआत में भारत प्रशासित कश्मीर में भेज दिया गया। पाकिस्तानी और अन्य सैन्य इतिहासकारों के अनुसार इस योजना को ही ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया गया। योजना ये थी कि हथियारबंद गुरिल्ला लड़ाकों के जरिए भारत के संचार तंत्र को ध्वस्त किया जाए और भारतीय सेना के अहम ठिकानों पर हमला किया जाए। कुर्बान अली बताते हैं,
टास्क हमें ये था कि आपने उनके सप्लाई और पुल और ऐसी जगह जो कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचे, जितने उन्होंने मासाती निज़ाम है उसको ख़त्म करना है।
कुर्बान अली और उनके साथियों को भारत प्रशासित कश्मीर में घुसपैठ करने के लिए लंबा और मुश्किल रास्ता तय करना पड़ा। उन्होंने कुपवाड़ा जिले में चौकीबल कस्बे के पास एक जंगल में छिपने का ठिकाना बनाया। लगभग एक महीना उन्होंने वहां बिताया और इस दौरान वो बताते हैं कि उन्होंने एक पुल को उड़ाया और भारतीय सेना को सामान की आपूर्ति करने वाले मुख्य बिंदुओं को भी निशाना बनाया। कुर्बान अली के मुताबिक उनके समूह में 180 लोग थे और उनमें से ज्यादातर आम लोग थे।
10 आदमी में 4 आदमी लघु थे, 6 आदमी जो है वो मुजाहिद फोर्स के होते थे।
अनुमान है कि जिब्राल्टर फोर्स में 7,000 से लेकर 20,000 तक लोग शामिल थे। इनमें से एक थे मोहम्मद नजीर। वो 1965 में महज 14 साल के थे। वो बताते हैं,
उस वक्त जो है ना वो मैं भर्ती स्कूल में पढ़ रहा था, 5वीं क्लास में, तो हम बच्चे थे उस वक्त। बिल्कुल ही मेरी उस वक्त जो है ना 13-14 सालों का थी जब मैं भर्ती हुआ, और एक मैं नहीं था, हमारे साथ जितने भी तकरीबन बहुत बच्चे थे जो मेरी उम्र के थे।
नजीर कहते हैं कि कम उम्र में उन्होंने बहुत खून खराबा देखा, लेकिन उनका मनोबल काफी ऊंचा रहता था। वो कहते हैं,
और जिस दिन फायर नहीं होता था हम बड़े परेशान होते थे। ये मैं आपको बताऊं कि फायर में हम बड़े खुश होते, क्या रौनक लगी हुई है यार, फायर हो रहा है। तो जिस दिन फायर स्टॉप हो जाए तो हमें बड़ी मायूस कर रहा, फुगल नहीं, फायर नहीं हो रहा, हम फायर को शुगल समझते थे उस वक्त।
ऑपरेशन जिब्राल्टर इस धारणा पर आधारित था कि गुरिल्ला हमलों के बाद भारतीय प्रशासित कश्मीर में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी बगावत कर देगी, क्योंकि जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ था तो बहुत से कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे। लेकिन कश्मीर के आम लोग न सिर्फ इतने बड़े पैमाने पर बगावत करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि घुसपैठियों ने उनका शोषण भी करना शुरू कर दिया था। भारत ने भी कश्मीर में अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी, घुसपैठ करने वाली जगहों को रोक दिया गया और उन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया जहां से पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद को खतरा पैदा होने लगा। उधर भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों ने सितंबर के पहले हफ्ते में जम्मू की तरफ बढ़ना शुरू किया। इसे देखते हुए ही भारत ने लाहौर और सियालकोट पर हमला बोल दिया। अगस्त के अंत तक ज्यादातर घुसपैठिए या तो पकड़े गए या फिर मार दिए गए, और जो बचे रहे उनसे लाहौर पर भारत के हमले के बाद लौट आने को कहा गया। रिटायर्ड एयर मार्शल नूर खान साल 1965 में पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख थे। उन्होंने पाकिस्तानी अखबार डॉन को दिए एक इंटरव्यू में माना कि सेना ने एक बड़े झूठ के जरिए पाकिस्तानी राष्ट्र को गुमराह किया, और वो झूठ ये था कि लड़ाई पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत ने शुरू की थी और इस लड़ाई में पाकिस्तान को शानदार जीत मिली थी। वो कहते हैं कि आज तक इस झूठ को सही नहीं किया गया है।
इस्लामाबाद से इलियास खान की रिपोर्ट पेश कर रहे थे अशोक कुमार। फैला उजारा प्रोफेसर सुनील खिलनानी की श्रृंखला इनकारनेशंस की 9वीं कड़ी, जानिए उन्हें जिन्हें राजाओं का राजा कहा जाता है। राजराजा राजेंद्र चोल चोल वंश के पहले राजा नहीं थे, लेकिन उनके समय में समुद्री व्यापार, शिल्पकारी और मंदिर निर्माण परवान चढ़े। प्रस्तुत करता है मोहनलाल शर्मा।
तीर्थयात्रियों ने मंदिर में जो दान दिया है उस पैसे की गिनती हो रही है। गिनने वाली 50-60 महिलाएं हैं, उनमें से कुछ ने फिरोजी और गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई है जो शायद उनकी वर्दी है। वो लगातार पैसे गिन रही हैं।
Most South Indian cities have a temple at their heart.
ज्यादातर दक्षिण भारतीय शहरों के केंद्र में एक मंदिर होता है। तमिलनाडु राज्य के तंजावुर या तंजौर शहर का केंद्र ये मंदिर 1000 साल पुराना है। स्थानीय निवासी इसे पेरिया कोइल यानी कि बड़ा मंदिर कहते हैं। बाहरी लोग इसकी विशालता को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। इस प्रस्तर भवन के निर्माण में 10 वर्ष लगे थे और ये चोल स्थापत्य कला की अद्भुत मिसाल है। चोल साम्राज्य 9वीं सदी के अंतिम वर्षों से 13वीं सदी के अंतिम वर्षों तक रहा और चोल शासक भारत की एक सर्वाधिक जटिल संस्कृति को अक्षुण रखने में सफल रहे। भव्य कलश से सुशोभित ये मंदिर सदियों तक भारत का सबसे ऊंचा मंदिर था। जब मध्य युग में ये मंदिर बन रहा होगा तो कावेरी नदी घाटी के किसानों को अपने धान के खेतों के पार पत्थरों की परत दर परत से आकार लेते इस मंदिर को देखना जरूर अचंभित करता होगा। जिस शासक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया वो हर काम को बेहद भव्य तरीके से करना पसंद करते थे। उनके बचपन का नाम था अरुल मौली वर्मन, लेकिन जब ईसवी सन 985 में वो चोल वंश की गद्दी पर बैठे तो उन्होंने जो नाम धारण किया राज राजा यानी राजाओं का राजा। कुछ लोगों का मानना है कि राज राजा और उनके पुत्र राजेंद्र के शासन काल के दौरान भारतीय इतिहास का केंद्र दक्षिण भारत हो गया था। जॉर्ज मिशेल भारतीय पुरातात्विक इतिहास के विशेषज्ञ हैं।
Suddenly this character, Rajaraja, he emerges as the dominant.
उन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसका नाम अपने नाम राज राजा पर राज राजेश्वर मंदिर रखा। वास्तव में ये मंदिर 11वीं सदी में भारत में बना सबसे बड़ा और सबसे भव्य मंदिर है। यह विशाल मंदिर आज भी राज राजा की आर्थिक ताकत, शानदार स्थापत्य और कलात्मक कौशल का साक्षी है।
We're going through door after door.
हम मंदिर में एक के बाद एक द्वारों को पार करते हुए गर्भगृह में आ पहुंचे हैं। ये एक बहुत ऊंचा कक्ष है, शायद 60 मीटर तक ऊंचा। इसे देखकर आश्चर्य होता है और अद्भुत है यहाँ आकर देखने की अनुमति पाना भी। अंदर के गलियारे में भित्ति चित्रों की एक चक्राकार श्रृंखला है। इन भित्ति चित्रों की खोज 1931 में मद्रास के एक प्रोफेसर ने दिए की रोशनी में की थी। बहुत बार इन चित्रों के ऊपर रंगाई पुताई हो चुकी है। प्राचीन भारतीय इतिहास में इस प्रकार के भित्ति चित्र आमतौर पर बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जैसे कि अजंता की गुफाएं। लेकिन यहाँ हिंदू कला के कुछ बेहद शानदार भित्ति चित्रों का खजाना है। मंदिर के आराध्य देव नटराज यानी भगवान शिव का एक विशाल चित्र भी इनमें शामिल है। शिव मुस्कुरा रहे हैं, उनका नृत्य रत पैर अपस्मार का दमन कर रहा है। हिंदू मिथकों के अनुसार अपस्मार अज्ञान का प्रतीक है। शिव की दाईं ओर छतरी के नीचे एक दाढ़ी वाला बलवान व्यक्ति खड़ा है। उसके वस्त्र साधारण हैं, उसने कोई आभूषण नहीं पहना है। उसके काले बाल जूड़े में बंधे हुए हैं, वो आगे की ओर झुका हुआ है। उसकी दोनों हथेलियां ऐसे खुली हुई हैं जैसे अपने आराध्य की अर्चना कर रहा हो और उन्हें पुष्प अर्पित कर रहा हो। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि राज राजा है, जिनकी प्रतिमा मंदिर के आराध्य के साथ स्थापित है। हर जगह धार्मिक संस्थाएं लोकोत्तर वास्तविकताओं के साथ लौकिक सामर्थ्य को भी प्रतिबिंबित करती हैं। ये मंदिर जितना भगवान शिव का है उतना ही राज राजा का भी। हम उनके प्रशासन के बारे में जितना जानते हैं उसके मुताबिक ये स्थान राज राजा का राज सिंहासन भी था और उनकी आराधना स्थली भी। इसी जगह से उन्होंने चोल साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन वो ऐसा कैसे कर पाए? इस सवाल का जवाब भी मंदिर के इस चित्र में मिलता है। चित्र में राज राजा के पीछे उनकी तीन रानियां खड़ी हैं।
They're small women and they're made more substantial.
वो तीनों कद में छोटी हैं और हाथों और कमर में भारी आभूषण पहने हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर रानी की त्वचा का रंग अलग अलग है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि वो मूलतः अलग अलग नस्लों की थी, और ये भी बताता है कि राज राजा के अधिकार में कितना बड़ा साम्राज्य था। राज राजा ने वो कर दिखाया जो उनसे पहले किसी भारतीय शासक ने नहीं किया था। उनके पास व्यापारिक नौकाएं थीं, लकड़ी से बने जहाज थे। उन्होंने सामुद्रिक अभियान चलाए और अपने राज्य में दूर दराज के क्षेत्रों से संपत्ति लेकर आए। मंदिर का डिजाइन परम सत्ता से उसकी निकटता के साथ साथ मालदीव, इंडोनेशिया और दक्षिणी चीन सागर तक फैले उसके राजनीतिक प्रभाव को भी दर्शाता है। व्यापारिक बुद्धि के धनी तमिल नाविकों ने समुद्री लहरों और मानसूनी हवाओं को मानो अपने वश में कर लिया था। कोरोमंडल के तट से मोती और मसाले लेकर वो आज की बंगाल की खाड़ी के पार जाते थे। तब बंगाल की खाड़ी का नाम चोल झील हुआ करता था। नाविक धातु और चीनी मिट्टी के सामान लेकर लौटते थे। उसके अंश अब भी पुरातत्वविदों को तट पर मिल जाते हैं। अरब दुनिया और चीन के बीचों बीच आने वाले जहाज भी चेन्नई के बलुई तट के दक्षिण में स्थित नागपट्टिनम बंदरगाह पर रुकते थे और राज राजा और उनके उत्तराधिकारी चोल राजाओं को कीमती माल से लदे इन जहाजों से अच्छा कर मिलता था। उस समय भी चीन का समुद्री व्यापार बहुत ज्यादा था और चीनी जहाज किसके बंदरगाह पर रुके इसे लेकर चोल राजाओं और सुमात्रा में श्री विजय के बौद्ध शासकों के बीच प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी। प्रतिस्पर्धा केवल व्यवसाय को लेकर ही नहीं थी। राज राजा के एक समुद्री अभियान में उत्तरी श्रीलंका के बौद्ध मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था और मुख्य भूमि पर चोल सैनिकों, तीरंदाजों, तलवारबाज और हाथियों पर सवार सैनिकों ने पड़ोसी राज्यों में भयंकर लूटपाट की। कहा जाता है उनमें से एक राज्य आज के कर्नाटक को 9,00,000 चोल सैनिकों ने रौंद डाला था। यकीनन ये अतिशयोक्ति पराजित राज्य ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए गढ़ी होगी। जैसे जैसे राज राजा विजय हासिल करते गए, उनकी पदवियां भी बड़ी होती गईं।
रत्नराज, अद्वितीय चोल, महान रक्षक, सूर्यवंश के रत्न, नृप केसरी।
मैं
हमेशा सोचता हूँ कि क्या इस विशाल मंदिर का भवन अपनी ताकत को लेकर राज राजा की असहजता की भी निशानी है। उनकी कोई नौकरशाही नहीं थी, कोई स्थायी सेना नहीं, और ऐसे में इस इलाके पर नियंत्रण बनाए रखना बेहद कठिन काम था। उनके साम्राज्य के अधीन स्थानीय राजाओं और ग्राम प्रमुखों, व्यापारी समूहों और गांव के व्यापारियों, ब्राह्मणों और पत्तन नियंत्रकों का एक बड़ा नेटवर्क था, और धान उपजाने वाले किसान तो थे ही। कई जातियों और कई स्थानीय संप्रदायों में बटे तब के समाज में बहुत अधिक विविधता थी। इसके अलावा राजराजा बेहद मुश्किल हालात में सत्तासीन हुए थे। उस समय चोल राज्य कन्नड़ शासकों के हाथों मिली हार से उबर रहा था। उनके दौर में बहुत कुछ बदल रहा था। उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से अपनी प्रजा की नब्ज भांपकर उसका विश्वास और भरोसा हासिल किया। चोल वंश का अध्ययन करने वाली अग्रणी भारतीय विद्वान प्रोफेसर चंपक लक्ष्मी बताती हैं।
Unless you build a temple, you cannot claim to be the sovereign.
जब तक आप कोई मंदिर नहीं बनवाते, तब तक आप संप्रभु शासक होने का दावा नहीं कर सकते।
The temple represents the symbol of royal power or political power.
मंदिर उस राजसी या राजनीतिक शक्ति का प्रतीक है जिसने इस मंदिर में अपने अधीन बहुत बड़े इलाके की सभी प्रकार की कलाओं को एक स्थान पर प्रस्तुत करने की कोशिश की है।
मंदिर राजराजा का राजकोष भी था। यहाँ वो अर्जित संपत्ति रख सकते थे और उस धन दौलत का एक हिस्सा अपने आराध्य को अर्पित कर सकते थे, और इस तरह अपनी शिव भक्ति और प्रजा प्रेम का भी प्रदर्शन कर सकते थे। मंदिर की दीवारों पर राज राजा की दानशीलता और धार्मिक प्रयोजनों के लिए संपत्ति के परित्याग की बातें उल्लिखित हैं। प्रशस्ति लेखों की भाषा मध्यकालीन तमिल है।
अपने शासन के 26वें वर्ष के 14वें दिन भगवान श्री राज राजा देव ने एक पवित्र स्वर्ण मुकुट दान किया, जो आडवल्लान से मापने पर 499 करंजू था। उसी दिन उन्होंने एक और स्वर्ण मुकुट भी दान किया, जिसका वजन 499 करंजू और 2.5 मंजदी था।
जॉर्ज मिशेल कहते हैं,
Not only does he itemize the gifts,
इन दीवारों में प्रशस्ति लेखों में न केवल दान की गई वस्तुओं की सूची है, बल्कि शुद्ध सोने का भार भी बताया गया है। मैं कहूंगा कि इन दीवारों पर सोने से जुड़े आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। आध्यात्मिक विचारों का उल्लेख कहीं भी नहीं है। इनमें केवल धन संपदा का ही जिक्र है। जैसे राजराजा ने मंदिर को 155 चांदी के बर्तन उपहार में दिए, वगैरह वगैरह।
कला के इतिहास में राजराजा का सबसे बड़ा योगदान है भगवान शिव की वो 60 प्रतिमाएं जो हल्की हैं, ठोस कांसे में ढली हैं, और जिनमें से अधिकांश को मंदिर निर्माण के समय समुद्र पार से लाया गया था। बेहद लालित्यपूर्ण और अलौकिक सौंदर्य की मिसाल ये चोल कांस्य प्रतिमाएं आज लाखों डॉलर में नीलाम होती हैं। लेकिन चोल शासन के दौरान इन्हें सहायक पुजारी समय समय पर होने वाली रथ यात्राओं में अपने सिर पर रखकर ले जाते थे। ढोल शंख ध्वनि के साथ छत्र धारक चला करते थे। इस धार्मिक जुलूस के आगे आगे एक हाथी चलता था और पुरुष मंत्रोच्चार और महिलाएं नृत्य किया करती थी। निर्धन प्रजा के जीवन में उल्लास भर जाता और श्रेय जाता था राज राजा को। प्रजा की नब्ज भांपकर जनमानस पर राज करने की क्षमता भी एक दक्षिण भारतीय कला है। राज राजा के समय यानी पिछले 1000 सालों में इसका काफी विकास हुआ है। आज भी इस इलाके में उपहार बांटने वाले नेताओं के अपने अपने समर्पित समर्थक हैं।
Everyone will tell you how politics in Tamil Nadu.
हर व्यक्ति आपको बताएगा कि 7 करोड़ की आबादी वाले तमिलनाडु की राजनीति कैसे अलग है। यहाँ के लोग उत्साही जोशीले हैं और अपने नेता के प्रति उनका समर्पण अंधभक्ति की हद तक होता है। राज्य की मुख्यमंत्री फिल्म तारिका से राजनेता बनी जयललिता जयराम की ही बात करते हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल हो गई थी। यहां लोग उन्हें अम्मा कहते हैं और उनके जेल जाने पर उनके दर्जनों अनुयायियों ने आत्महत्या कर ली।
इस महिला का कहना है कि अम्मा की ही वजह से उसके बच्चों को स्कूल बैग मिले और उसके बच्चे स्कूल जा सके। अम्मा उसे 1,000 रुपए मासिक पेंशन देती हैं, उसकी मदद करती हैं और उसे साड़ियां भी देती हैं।
जब 2012 में मुंबई के लोकप्रिय राजनेता बाल ठाकरे की मृत्यु हुई तो प्रशासन को बड़े पैमाने पर हिंसा और आत्महत्याओं की आशंका थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर तमिलनाडु की बात अलग है। यहाँ के नायक नायिकाएं भी देवताओं से होड़ करते हैं। राज राजा के समय के 1,000 वर्ष बाद भी उनकी ये राजनीतिक कला पूरे परवान पर है।
और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। प्रगति स्टूडियो आ चुकी है। प्रगति, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी सुशीला, जो सबसे अहम खबरें हैं जो सभी अखबारों ने ली हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि पाक सेना अध्यक्ष ने धमकी दी और उस पर भारत का करारा जवाब आया। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब पाक अधिकृत कश्मीर को छुड़ाना ही हमारा मुद्दा है। बीएसएफ, आपको याद दिला दें कि बीएसएफ और पाक रेंजर्स की डीजी स्तरीय बैठक होने से पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ का ये भड़काऊ बयान आया, जिस पर राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया दी। एयर इंडिया के विमान में आग लग गई, धुआं निकला उसके सामने वाले पहिए से, दाएं पहिए से, और उसमें बनारस से आ रहे विमान को दिल्ली में आपात लैंडिंग करनी पड़ी और 159 यात्री बच गए। डॉन की घेराबंदी हो रही है। यूएई में दाऊद की 50 संपत्तियों की जाँच शुरू हो गई है। माछिल फर्जी मुठभेड़ में 2 सैन्य अफसरों समेत 6 की उम्र कैद बरकरार है। ये आरोपी जो हैं अब हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं फिर से। सेंसेक जो है 25,000 अंक नीचे आ गया है। और आप में गुटबाजी फिर सामने आई। वायरल हुए ऑडियो में भगवंत मान का दावा है कि झाड़ू ने नहीं, सेलिब्रिटी स्टेटस ने दिलाई थी जीत। प्रेमिका के चक्कर में बम की अफवाह। दिल्ली और बंगलुरु हवाई अड्डों पर 7 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में देरी कराने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर एमजी गोकुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवभारत टाइम्स में एक खबर है कि मर्डर के साथ दिल्ली एनसीआर में 40 वारदात का रहस्य खुला है। नोएडा के एक इंजीनियर सचिन सांगवान की हत्या के 4 आरोपियों ने बताया कि उन्होंने किस तरह 40 वारदात लूटपाट की, मारपीट की, 40 वारदातों को उन्होंने अंजाम दिया। प्रधानमंत्री उद्योगपतियों से आज मिलेंगे, ये जनसत्ता की खबर है। और थाईलैंड विस्फोट में 2 भारतीयों को भी हिरासत में लिया गया है। देश हित में आरक्षण का लाभ वो छोड़ने को तैयार हैं, ये जनसत्ता में एक खास खबर है कि ओबीसी भंडारी समुदाय के लोग जो हैं पाटीदार आंदोलन के बरक्स, वो चाहते हैं कि वो देश हित में आरक्षण को छोड़ देंगे। सलीब पर नारायण गुरु, ये केरल में एक विवाद शुरू हो गया है। मुसीबत में कॉमरेड संत सुधारक श्री नारायण गुरु को केरल की एक शोभा यात्रा में सलीब पर दिखाने पर वहाँ के सांस्कृतिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। दैनिक जागरण में खबर है कि मानव सिर के प्रत्यारोपण की तैयारी हो रही है। ये बीजिंग में डॉक्टर्स ने कुछ इस तरह की तैयारी की है। उधर वाशिंगटन में डॉक्टरों ने कहा है कि उन्होंने ऐसे उपकरण बनाए हैं कि जिसके बाद कुछ देर पहले दम तोड़ चुके व्यक्ति का हृदय संरक्षित किया जा सकता है।
समाचार पत्रों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हंगरी के रक्षा मंत्री चोबा हिंदे ने इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक सर्बिया से लगी सीमा पर 4 मीटर ऊंची दीवार बनाने में हुई देर इसकी एक वजह हो सकती है। उधर संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थियों के लिए एजेंसी UNHCR ने लेस्बोस द्वीप पर प्रवासियों की बड़ी तादाद को संभालने के लिए ग्रीस के अधिकारियों की मदद करना शुरू कर दिया है। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावतोग्लू ने वायदा किया है कि वो कुर्द चरमपंथी गुट PKK को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ग्वातेमाला के चुनाव के पहले दौर में जिमी मोरालेस जीत गए हैं। वे एक हास्य कलाकार रहे हैं जिन्होंने इससे पहले किसी सरकारी पद पर काम नहीं किया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। इसी के साथ नमस्कार भारत में आज बस इतना ही। आपसे विश्व भारती में 8 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।